प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 से 6 पद तक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जो कुछ भी हम सुनते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन में बढ़ने पाएं। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, निराशाओं में हैं या किसी प्रकार के तनाव में हैं, आप उनकी भी सहायता करें। इस समय हम आपकी आशीषों को मांग लेते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा कि मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पौलुस 7 प्रकार की एकता का उल्लेख करता है। तो आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 से 6 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो आइए हम देखें, सबसे पहला है एक ही देह, अर्थात पेंतिकोस्त के दिन से कलीसिया के उठाए जाने तक सब विश्वासी। इस एक ही देह को अप्रत्यक्ष कलीसिया भी कहते हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। सब सच्चे विश्वासियों को प्रत्यक्ष भी होना है। दूसरी बात हम देखते हैं, एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा जो प्रत्येक विश्वासी को मसीह की देह में बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा का काम है कि विश्वासियों को मसीह में एक करे। विश्वासी को इसी एकता को बनाए रखने का आदेश दिया गया है। तीसरी बात, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, यह सब विश्वासियों के सामने रखे लक्ष्य के संदर्भ में है। वे इस संसार से निकलकर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लाए गए हैं, यह धन्य आशा है। आप देखिए तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में। चौथी बात है, एक ही प्रभु, अर्थात प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों पर उसकी प्रभुता कलीसिया की एकता लाती है। पांचवी बात, एक ही विश्वास, अर्थात प्रेरितों की शिक्षा, देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 पद। इसका इनकार करने के कारण विभाजन उत्पन्न होता है। विश्वासियों को जोड़ने के लिए कुछ होना आवश्यक है जो सही शिक्षाएं हैं। छठवीं बात, एक ही बपतिस्मा, अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यही सच्चा बपतिस्मा है। सांसारिक बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के सच्चे बपतिस्मे का प्रतीक है, जिसके द्वारा विश्वासी एक किए जाते हैं। और सातवां और अंतिम बात है, एक ही परमेश्वर और पिता है, अर्थात परमेश्वर विश्वासियों का पिता है। क्योंकि पिता एक ही है, इसलिए वह अविश्वासियों का पिता नहीं है। पुत्र होना केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। विश्वासियों की एकता विश्वासियों और अविश्वासियों में महान अंतर लाती है। वह उन सबका पिता है जो नया जन्म पाकर उसके हो जाते हैं, अर्थात जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं वे उसके हो जाते हैं। पौलुस कलीसिया मसीह की देह के बारे में कह रहा है कि वह प्रभु यीशु से जुड़ी है जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर उपस्थित है। कलीसिया नया मनुष्य है, यह भेद है, यह सब सच है, क्योंकि यह मसीह में है। कुछ लोग इन सच्चाइयों में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वे संसार में किसी काम के नहीं रहते। पौलुस यह प्रकट करना चाहता है कि हम अब भी इस दुष्ट और पापी संसार में रहते हैं। विश्वासियों के आचरण की इस चर्चा में पौलुस सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहता है। विश्वासी को नम्रता और मन की दीनता में चलना चाहिए। इसके साथ वह संपूर्ण कलीसिया के संबंध में कहता है कि वह एक देह, एक आत्मा है। अंत में वह इस गद्यांश को महान पराकाष्ठा पर लाता है, जो परमेश्वर की प्रधानता और अलौकिकता का चित्रण प्रस्तुत करता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर भौतिक सीमाओं के पार है। वह अपनी सृष्टि पर परम प्रधान है, उस पर निर्भर नहीं है। उसे सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं है, उसे भोजन के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। वह भौतिक दशा से परे है, महिमाशाली है। वह सबके ऊपर ही नहीं, सबके मध्य में और सब में है। इसका अर्थ है कि वह इस संसार में भी है, जिसमें हम सब रहते हैं। वह संसार को अपने उद्देश्य और योजना के निमित्त चलाता है, उत्प्रेरित करता है। यही है जो जीवन को अर्थ प्रदान करके महत्वपूर्ण बनाता है। मेरे मित्रों, जीवन कभी कभी नीरस हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि उबाव स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि मुझे अपने रेडियो कार्यक्रम के लिए प्रसारणों पर काम करने में बड़ा आनंद आता है, परंतु जब मैं लगातार 2 सप्ताह तक काम करता हूं, तब वही आनंददायक काम नीरस लगने लगता है और मैं काम करते करते ऊब जाता हूं। तो तुरंत ही मेरे मन में यह विचार उभरता है, यह सब परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य के निमित्त है। और मैं सोचता हूं कि स्तुति गान या हल्लेलुया के गान गाऊं, परंतु सब दूर भागने लगते हैं। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में बाइबल कहती है, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरा स्तुति गान ऐसा ही होता है, मुंह से नहीं परंतु मन से। मुझे स्मरण आता है, एक बार मेरे मित्र मुझे किसी संगीत कार्यक्रम में ले गए। मैं संगीत का क ख ग भी नहीं जानता, परंतु मुझे वहां एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली। वहां मंच पर अनेक संगीत वाद्य रखे थे। कुछ ही देर में अनेक लोग आकर उन्हें छेड़ने लगे। मुझे बताया गया कि वे उन्हें स्वरवध कर रहे हैं। उस असंगत ध्वनि में मधुरता नाम की कोई भी चीज नहीं थी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सब लोग पाशरों में चले गए, परंतु वे फिर प्रकट हुए। इस बार वे सफेद कमीज और टाई लगाए हुए थे। वे सब अपने अपने वाद पर उपस्थित हुए। अब उनका निर्देशक आया और अपनी बेंत उठाकर हमारी ओर पीट करके खड़ा हो गया। उसने बेंत ऊपर उठाई, वहां मौन छाया हुआ था। जब उसने बेंत नीचे की, तब ओह, अति मधुर संगीत सुनाई दिया। मैं इससे अधिक पुलकित करने वाला संगीत कभी नहीं सुना था। सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं आनंद से भर गया। पहले अति उत्तम प्रदर्शन के बाद मैं ऊब गया। मैं उसकी तुलना इस पार्थिव जीवन से करने लगा। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी ही राग आलाप रहा है। सबके सब बेसुरे हैं, तालमेल किसी में भी नहीं है। आज तो संसार में कुछ भी आशा से पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। भविष्य की आशा लिए हुए हैं हम। पानी पर चलते पतरस के समान लहरों से भयभीत हैं, परंतु एक दिन परमेश्वर की दाहिनी ओर से निर्देशक प्रकट होगा, जिसे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। वह कीलों से छिदे हाथ में बेंत उठाएगा और तुरंत ही संपूर्ण संसार सुर में आ जाएगा। वह परम प्रधान है और भौतिक दशा से परे है। वह सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अतः हिम्मत ना हारें। निर्देशक आने वाला है, वह हम सबको सुर में ले आएगा। मेरे प्रियो, कलीसिया को इस संसार में एक नए प्राणी के समान व्यवहार करना है, एक प्रदर्शन दिखाई देना है। कलीसिया को संसार में निकलना है कि गवाही दे, जीवन का प्रदर्शन करे। अब हम देखेंगे कि कलीसिया के पास कुछ निषिद्धताएं भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक छोटे बालक के लिए निषेधाज्ञाएं नहीं हैं। मुझे कलीसिया के कुछ सदस्यों का स्मरण आता है, जब मैं उनके घर गया तब उन्होंने अपनी पवित्रता और धार्मिकता का बड़ा प्रदर्शन किया। भोजन करने बैठ जाने पर उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। उनका एक 3 वर्षीय पुत्र था। उसने प्रार्थना के बाद अपनी माता से पूछा, इस व्यक्ति ने क्या किया? स्पष्ट था कि वे भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चढ़ाते थे। वह छोटा बालक कहने के लिए किसी प्रकार की रोक में नहीं था। मेरे प्रियो, बच्चा तो बंधन मुक्त हो सकता है, परंतु कलीसिया सदैव ही बच्चा न बनी रहे। उसे विकास करना है और निषेधाज्ञाओं को मानना है। कुछ बातें बच्चा तो कह सकता है, परंतु एक वयस्क नहीं कह सकता। कलीसिया को शिशु अवस्था से उभरकर विकास करना है। परमेश्वर ने अपने प्रत्येक संतान को अनुग्रह प्रदान किया है कि वह विकास करे। क्या आप कर रहे हैं? इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। रोमियो के पत्री 12 और 1 क्रंथियों के पत्री 12-14 में दर्शाया गया है कि परमेश्वर ने विश्वासियों को कौन कौन से वरदान दिए हैं। यद्यपि विश्वासियों को आत्मा की एकता में यत्नशील रहना है, इसका अर्थ यह नहीं कि सब एक दूसरे की प्रतिलिपि हों। प्रत्येक विश्वासी को वरदान प्राप्त है कि वह विश्वासी की देह में एक विशेष भूमिका निभाए। 1 क्रंथियों के पत्री 12:7 में पौलुस लिखता है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसका अर्थ है कि वरदान विश्वासी के माध्यम से विश्वासियों की देह के निर्माण के निमित्त आत्मा का काम है। यह विश्वासियों की संपूर्ण देह के लाभ के लिए है। आपके आत्मिक विकास के लिए आपको कोई वरदान नहीं दिया जाता है। आपको वरदान इसलिए दिया जाता है कि आप विश्वासियों की देह में लाभ के लिए और कलीसिया में आशीष के लिए काम करें। मुझे कुछ लोग कहते हैं, हम कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलते, परंतु अपने व्यक्तिगत मनन में बोलते हैं। मैं उन्हें विशेष करके परमेश्वर के वचन से कह सकता हूं कि वे गलत सोचते हैं। वरदान कलीसिया के लाभ के लिए दिए जाते हैं। कोई भी वरदान स्वार्थ के निमित्त व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में नहीं लेना है। सच तो यह है कि यदि वरदान का उपयोग स्वार्थ परायण हो तो वह वरदान नहीं है। देह के प्रत्येक सदस्य को देह में अपने स्थान पर एक विशेष कारण के निमित्त कार्य करने की योग्यता हेतु वरदान दिया जाता है। यदि मेरी आंखें कहे उनको नींद आ रही है और वे मेरे साथ जागना नहीं चाहती, यदि मेरे पैर कहें कि वे सीढ़ियों से नीचे उतरना नहीं चाहते, मुझे मेरे पैरों की आवश्यकता है, आंखों की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि मेरा मस्तिष्क सहयोग देगा। सच तो यह है कि मेरी देह के सब अंगों को अपना अपना काम करना है। प्रत्येक विश्वासी को वरदान दिया गया है कि वह विश्वासियों की देह में एक विशेष काम करे। जब ऐसा करता है तब देह सुचारू रूप से काम करती है। यही तो आत्मा की एकता है। मेरे प्रियो, वरदानों के संदर्भ में पौलुस यह भी कहता है कि हम में से प्रत्येक को अनुग्रह भी दिया गया है कि हम परमेश्वर के आत्मा की परिपूर्णता और उसके सामर्थ्य में उस वरदान को काम में लें। जब प्रत्येक विश्वासी अपने विशेष वरदान को काम में लेता है तब मनुष्य के शरीर के अंगों के समान तालमेल उत्पन्न होता है। तथापि जब देह का एक भी अंग दुखता है तब संपूर्ण देह को पीड़ा पहुंचती है। इसका अर्थ यह हुआ मेरे मित्रों कि यदि आप देह में अपना वरदान काम में नहीं लेते तो आप हम सबको बेसुरा कर देते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को किडनी की समस्या है और उसे दूसरा किडनी लगाने की आवश्यकता है तो उसमें तालमेल होना चाहिए ताकि वह उसमें जीवित रह सके, अन्यथा वह बेसुरा है, वह मृत है। हम इफिसियों के पत्र 4:8 में आगे पढ़ते हैं, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। यह भजन संहिता 68:18 का संदर्भ है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटे ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। आप कहेंगे कि यहाँ विषमता है क्योंकि इफिसियों की पत्री में वह लिखता है मनुष्यों को दान दिए और भजन में लिखा है मनुष्यों से भी भेंटे ली। क्या यह पुराने नियम के संदर्भ को अनुचित प्रस्तुत किया गया है? कृपया ध्यान दें कि लेखक को अपने ही लेख में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, किसी और को नहीं। एक बार एक लेख गलत संदर्भित कर दिया गया था जिसके लिए प्रकाशक को क्षमा याचना करनी पड़ी थी, परंतु यदि उचित समझा जाए तो वह अपने लेख में परिवर्तन कर सकता है। मेरे मित्रों, इस पद में पवित्र आत्मा एक उद्देश्य के निमित्त शब्दों में परिवर्तन लाता है। भजन संग्रह में लिखा है कि प्रभु यीशु ने मनुष्यों से भेंटे स्वीकार की थी, उसके पास भेंटों का भंडार था। अब वह पृथ्वी पर आया और पिता के पास लौट गया। अब वह मनुष्यों में दान कर रहा है जो वह पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। यह पद एक बार फिर बाइबल की प्रामाणिकता प्रकट करता है, न कि उसकी चूक। आगे है कि वह ऊंचे पर चढ़ा। प्रभु यीशु का स्वर्गरोहण, उस समय उसने दो काम किए। पहला, बंदियों को बांध ले गया, और मेरे विचार में ये बंदी अधोलोक में उपस्थित पुराने नियम के मुक्ति प्राप्त मृतक पवित्र जन थे। प्रभु यीशु अपने स्वर्गरोहण के साथ ही उन्हें अधोलोक से निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया। आज विश्वासी मरकर अधोलोक में नहीं जाता है, वह देह त्याग कर मसीह के साथ उपस्थित हो जाता है। दूसरा, कुरिन्थियों की पत्री 5:8, फिलिपियों की पत्री 1:23 में हम इसे देख सकते हैं। दूसरी बात है, स्वर्गरोहण के समय प्रभु यीशु ने मनुष्यों को दान भी दिए। इसका अर्थ है कि उसने जीवित विश्वासियों को वरदान दिए कि वे संसार में उसकी गवाही दें। अपने स्वर्गरोहण के साथ प्रभु यीशु पुराने नियम के पवित्र जनों को परमेश्वर की उपस्थिति में ही नहीं ले गया, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दान भी दिए। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने विश्वासियों का मसीह की देह में बपतिस्मा किया और उन्हें कुछ वरदान दिए कि वे देह के अंग होकर काम करने योग्य हो जाएं। पवित्र आत्मा ने प्रत्येक को देह में एक विशेष स्थान में रखा है और तब से ही वह प्रत्येक नए विश्वासी के साथ ऐसा ही कर रहा है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं इफिसियों की पत्री 4:9-10 में उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। मेरे प्रियो, इस पद का तार्किक अर्थ यह है कि प्रभु यीशु चढ़ा तो कभी वह उतरा भी होगा। कुछ विचारक इसमें केवल देह धारण को देखते हैं। आरंभिक कलीसिया के पितरों ने इसमें पुराने नियम के पवित्र जनों का अधोलोक से निकाला जाना और परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष लाया जाना देखा है। विश्वास वचन में हम कहते हैं कि वह अधोलोक में उतरा, अर्थात उस स्थान में जहां मृतकों की आत्माएं थी। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मरणोपरांत भी पीड़ा उठा रहा था। वहां से वह पुराने नियम के पवित्र जनों का उद्धार करके उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया। इसकी और भी व्याख्याएं हो सकती हैं, परंतु यह सत्य है। मेरे मित्रों, आज हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की निकटता में आना तो चाहता है, लेकिन उसके जैसा जी नहीं पाता है। आज पौलुस इफिसियों के पत्री के द्वारा हमें सिखाना और बताना चाहता है कि हम कलीसिया के लोगों को एकता में बने रहना है, उसके लिए एक नमूना का जीवन जीना है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है, आपकी कलीसिया किस प्रकार की है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात का स्मरण दिलाता है कि हमारा प्रभु जो हमारे लिए नीचे उतर गया और स्वर्ग पर चढ़ गया, वह चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें, उसकी महिमा का गान करें, उसकी स्तुति करें। क्यों ना आज हम अपने जीवन में इन सारी बातों को आने दें। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और आज हम प्रभु से कहें कि आप मेरी सहायता कीजिए, मैं एक नया व्यक्ति, नया मनुष्य, नई सृष्टि के रूप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ कमी, कुछ घटियां हैं, आपके जीवन में कुछ पाप हैं, कुछ त्रुटियां हैं, परंतु आप डरे नहीं, परमेश्वर उसे दूर कर सकता है। मेरे प्रिय मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और नए जीवन का आरंभ करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना। उसने